रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसद से अनुमोदन करने के विषय में सत्ता गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बीच विचार विमर्श जारी। एमसीसी राष्ट्रहित के खिलाफ नहीं है, इसलिए इसे संसद से अंतिम रूप देना होगा, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का कथन। नेपाली कांग्रेस के 14वें महाधिवेशन अंतर्गत अधिवेशन होने को बाकी 16 जिलों का अधिवेशन फागुन 15 गते करने का केन्द्रीय निर्वाचन समिति का निर्णय। और भारत के उत्तर प्रदेश में कुएं में गिरने से हुई 13 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सत्तारूढ़ गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बीच अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसद में प्रस्तुत करने के विषय में विचार विमर्श हुआ है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आज शाम हुई बैठक में सत्ता गठबंधन दल के शीर्ष नेताओं की बैठक में संसद बैठक सुचारू कर एमसीसी समझौते को संसद में प्रस्तुत करने के विषय में विचार विमर्श हुआ। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने दी। बैठक में नेपाली कांग्रेस के प्रधानमंत्री एवं पार्टी सभापति देउबा, उपसभापति पूर्ण बहादुर खड़का, नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, महामंत्री गगन थापा, माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड, नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टी की ओर से बाबूराम भट्टराय और नेता राजेंद्र श्रेष्ठ शरीक थे। शीर्ष नेताओं की बैठक शुक्रवार सुबह 10 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी राष्ट्रहित के लिए है, इसलिए संसद से इस प्रस्ताव को पास करने में कांग्रेस एकमत है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आज आयोजित कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी द्वारा लिखित पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउबा ने कहा, एमसीसी के पक्ष में खड़े होने के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री देउबा ने कहा कि नेपाली कांग्रेस राष्ट्रहित के विषय में निर्णय लेने के लिए किसी से नहीं डरेगी। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि सत्ता गठबंधन को बचाने की ओर हमारा ध्यान केंद्रित है। नेकपा माओवादी केंद्र संसदीय दल के कार्यालय सिंह दरबार में आज एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल और जनता समाजवादी पार्टी के नेता एवं संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ के साथ विचार विमर्श के बाद अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि गठबंधन के 5 दलों को एक बनाने और एमसीसी को निकास देने के विषय पर विचार विमर्श हुआ। नेपाली कांग्रेस के 14वें महाधिवेशन अंतर्गत बाकी 16 जिलों का अधिवेशन इसी फागुन 15 गते के लिए तय हुआ है। कांग्रेस की केंद्रीय निर्वाचन समिति ने जिलों का अधिवेशन 15 गते के लिए तय किया। ये जानकारी निर्वाचन समिति के सचिव केशव रिजाल ने दी। बता दें कि सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोतरी, सरलाही, रौतहट, बारा, परसा, मकवानपुर, सिंधुली, सिंधुपाल चौक, चितवन, नबलपुर, बांके, कैलाली और असहम जिलों का अधिवेशन होना बाकी है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए दल पंजीकरण करने का आह्वान किया है। आयोग द्वारा आज बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता सालीग्राम शर्मा पौड़ियाल ने बताया कि आयोग में दर्ज राजनीतिक दलों के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए आयोग में दल पंजीकरण करने के प्रावधान के तहत फागुन 15 गते तक में दल पंजीकरण करने का आग्रह किया गया है। प्रवक्ता पौड़ियाल ने कहा कि मतपत्र की छपाई के लिए जरूरी कागज ई वीडिंग के माध्यम से खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। आगे उन्होंने बताया कि आगामी बैसाख 30 गते को होने वाले स्थानीय तह चुनाव के लिए जनशक्ति व्यवस्थापन, मतपत्र छपाई, निर्वाचन सामग्री लगायत की तैयारी आगे बढ़ाई गई है। आयोग ने निर्वाचन में जनशक्ति परिचालन को सरल और सहज बनाने के लिए जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 को स्वीकृत किया है। साथ ही प्रवक्ता पौड़ियाल ने यह भी बताया कि फागुन 6, 7 और 8 गते छठवां निर्वाचन दिवस मनाने का निर्णय किया गया है। बता दें कि विक्रम संवत 2015 फागुन 7 गते पहली बार बालिग मताधिकार के आधार पर हुए निर्वाचन के स्मरण में आयोग ने विक्रम संवत 2073 से निर्वाचन दिवस मनाना शुरू किया था। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
श्रमिकहरूको मौलिक अधिकारको सम्मान गरौं, सबै प्रतिष्ठानहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गर्न आनाकानी नगरौं।
नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। भाउजू दर्शन
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते भाउजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ भाउजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाँकी समाचार। नेपाली कंग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल ने कहा कि मौजूदा समय में गठबंधन के खिलाफ जाना कांग्रेस के लिए हितकर नहीं होगा। नेपाली कांग्रेस तनहू क्षेत्र नंबर एक द्वारा आज दमौली में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता पौडेल ने कहा कि कांग्रेस को अकेले लड़ने का आत्मविश्वास रखनी चाहिए। वरिष्ठ नेता पौडेल ने कहा कि परिस्थिति अनुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बेलायत में कोविड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की 21 लाख डोज उपलब्ध कराया है। कोवैक्स सुविधा अंतर्गत बेलायत ने नेपाल को 21 लाख एस्ट्राजेने वैक्सीन का डोज उपलब्ध कराया, ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। इसी तरह आज 570 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जबकि आज कोरोना के 570 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 6 संक्रमितों की मौत हो गई, ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। पिछले 24 घंटों में 1993 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। बहरहाल देश भर में 16,616 सक्रिय संक्रमित हैं। काठमांडू के बालाजू में बस की टक्कर से 2 पैदल यात्रियों की मौत हो गई। बालाजू स्थित गंगा हॉल के सामने आज बस की टक्कर से नुआकोट के 18 वर्षीय विकास तामांग और बालाजू सुकुमबासी बस्ती की 50 वर्षीय दुर्गा माया थापा की हुई मौत की जानकारी महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजू ने दी। बागलुंग जिले में 13वीं बार फाइलेरिया के विरुद्ध दवा खिलाने की तैयारी की गई है। 12 बार आम औषधि सेवन अभियान संचालित हो चुके बागलुंग में अब भी फाइलेरिया के रोगी पाए जाने के कारण 13वीं बार आम औषधि सेवन कार्यक्रम संचालन किया जा रहा है। गंडकी प्रदेश के स्वास्थ्य निर्देशनालय ने आम औषधि सेवन कार्यक्रम संचालन के लिए बागलुंग के सरोकार वालों के साथ समीक्षा तथा योजना गोष्ठी की। जिले के सभी 10 स्थानीय तहों ने फागुन 15 गते से अभियान अंतर्गत की विभिन्न कार्यक्रम संचालन करने की कार्ययोजना बनाई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के उत्तर प्रदेश में कुएं में गिरकर 13 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के एक विवाह समारोह के दौरान कुएं में गिरने से 11 महिलाएं और 2 बच्ची की मौत हो गई, ये जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य के वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी अखिल कुमार ने दी। बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए इस हादसे को हृदय विदारक घटना बताया है। यूक्रेन रूस सीमा से रूसी सैन्य टुकड़ियों की वापसी की खबरों के बीच एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि रूस अभी भी अपनी सैन्य टुकड़ियों को इस क्षेत्र में भेज रहा है। बीती शाम व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए इस अधिकारी ने बताया है कि बीते कुछ दिनों में लगभग 7,000 रूसी सैनिक सीमा पर तैनात किए गए हैं। अमेरिका इससे पहले भी कह चुका है कि रूस की ओर से इस तरह का अभियान चलाया जा सकता है। बता दें कि बीती काफी दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अपने चरम पर है और दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका जताई जा रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों से यूक्रेन और रूस सीमा से रूसी सैन्य टुकड़ियों की वापसी की खबरें आ रही है। हालांकि यूक्रेन की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि रूसी सैन्य टुकड़ियों की वापसी फिलहाल नहीं हो रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसद से अनुमोदन करने के विषय में सत्ता गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बीच हुआ विचार विमर्श जारी। एमसीसी राष्ट्रहित के खिलाफ नहीं है, इसलिए इसे संसद से अंतिम रूप देना होगा, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा का कथन। नेपाली कांग्रेस के 14वें महाधिवेशन अंतर्गत अधिवेशन होने को बाकी 16 जिलों का अधिवेशन फागुन 15 गते करने का केन्द्रीय निर्वाचन समिति का निर्णय और भारत के उत्तर प्रदेश में कुएं में गिरने से हुई 13 लोगों की मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।